नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों से बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेजेंगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पुणे आईईडी मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के स्लीपर मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिणी भारत में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट एक सप्ताह के बाद आज फिर से शुरू हो रहा है। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेज रही है। यह प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व और प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे। इस बीच मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत का सामूहिक संकल्प दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने के महत्व को रेखांकित करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि भारत आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प में एक मजबूत और अधिक देश है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल जीत सिंह डोल्ले ने सशस्त्र बलों को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई देते हुए कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना के प्रति सम्मान और एकजुटता दिखाने के लिए पुदुचेरी विश्वविद्यालय ने आज परिसर में तिरंगा विजय यात्रा का आयोजन किया। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की सुरक्षा में सहायता करने का अधिकार है। वे आज नई दिल्ली में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर की उल्लेखनीय सफलता के लिए सभी सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच समूचा राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार का स्मरण किया जा रहा है। उन्होंने करगिल युद्ध में अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया था। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी ने उत्तरी और मध्य कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी की है। तलाशी अभियान आज सुबह से उत्तरी कश्मीर के सोपोर, बारामूला और हंडवारा तथा मध्य कश्मीर के गांदरबल और श्रीनगर में चलाया जा रहा है। अभी तक किसी गिरफ्तारी और बरामदगी की सूचना नहीं मिली। यह अभियान संदिग्ध आतंकी गतिविधियों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में आईईडी के निर्माण और परीक्षण के संबंध मामले में की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की जांच जारी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका के साथ जारी व्यापार वार्ता जटिल है और अंतिम निर्णय से बहुत दूर है। श्री जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर टिप्पणी करते हुए ये बात कही, जिसमें श्री ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर भी शुल्क हटाने की पेशकश की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है और कोई भी व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी और हित में होना चाहिए। इससे पहले श्री ट्रंप ने कहा था कि वो अभी किसी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व में फैली भारतीय प्रवासियों को एक टिकाऊ तथा समृद्ध भविष्य के निर्माण में खोज निवेश और साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है। श्री गडकरी ब्राजील के साओ पाउलो में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। चुनाव आयुक्त डॉ विवेक जोशी ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज पूर्वी चंपारण जिले का दौरा किया। चुनाव आयुक्त ने मोतिहारी में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच प्रक्रिया को अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान में बीकानेर के देशनोक से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में सूचना और प्रसार विभाग रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा है कि इन स्टेशनों को सिटी सेंटर की तेज तर्ज पर पुनर्विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। दुनिया भर में आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप से संबंधित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे बचने के उपायों का प्रचार करना है। इस वर्ष का विषय है, अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापे, नियंत्रित करें और जिए लंबा जीवन। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पूर्व मध्य और दक्षिण भारत में गरज के साथ तूफान, आंधी और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने पश्चिमी भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी इसी तरह की परिस्थितियों का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जो अगले 4 से 5 दिनों तक यूं ही बरकरार रहेगी। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, पाके केसांग, ईस्ट कमिंग, कुरुंग कुमे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, शियोमी, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वेस्ट कमिंग, पापुमपारे, ईस्ट सियांग और लोअर दिवांग वैली के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही अपर सियांग और वेस्ट सियांग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के 101वें मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पीएसएलवी C61 रॉकेट कल सुबह 5:59 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 के साथ उड़ान भरेगा। मिशन के अंतर्गत EOS-09 को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। EOS-09 को विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन अनुप्रयोगों के लिए निरंतर और विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। EOS-09 उपग्रह में एक सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड है, जो मौसम की स्थिति में विभिन्न पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के लिए चित्र प्रदान करेगा। भारत के नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि पर देश को उन पर गर्व है। आईपीएल क्रिकेट एक सप्ताह के बाद आज से फिर शुरू हो रहा है। आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 पर खेला जाएगा। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण 9 मई को आईपीएल प्रतियोगिता निलंबित कर दी गई थी। इधर कल यानी 18 मई को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित यूपीआई में चल रही 7वीं SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भारत बांग्लादेश से भिड़ेगा। शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में मालदीव को 3-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। डेनी मेटेई ने 14वें मिनट में भारत के लिए पहला गोल किया। इससे पहले स्थानीय खिलाड़ी ओमांग दोदुम ने 21वें मिनट पर बढ़त को दोगुना कर दिया। आखिरी गोल प्रशांत जाजो ने 65वें मिनट में किया। दूसरी ओर गत चैंपियन बांग्लादेश ने पहले सेमीफाइनल में नेपाल को 2-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख साझेदारी देशों से 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेजेंगी। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।